un sentit.
Azi reșiură de un sit to have and work with Mata. तो क्या था जब शुरू में जब यज्ञ में मधुबन में आना था तो हम जब तक नियम और धारणा में पक्के नहीं होंगे और उसके बाद फॉर्म भरा जाता था उसके बाद ही मधुबन भेजते थे। तो क्या था कि एक दिन हमारे टीचर ने सबको बोला कि मधुबन जाना है आप लोग फॉर्म भर दो। तो टीचर ने बोला एक दिन मधुबन सबको बोला कि एक दिन मधुबन जाना है तो आप लोग सब फॉर्म भर दो। तो सभी ने फॉर्म भर दिए लेकिन मैंने फॉर्म भरने के लिए मना कर दिया। तो सबकी नज़र मेरे तरफ चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि फॉर्म नहीं भरा इसका मतलब मैं धारणा और नियम में पक्का नहीं हूँ। तो सभी ने टीचर को बोला देखा ये कितना आगे आगे चला जाता है लेकिन देखा ये अभी से धारणा में नहीं है तो ज्ञान में इतना चलने वाला नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे पुराने जो भाई बहने थे वो मेरे पास आके मुझे बोलने लगे देखा ऐसे कभी माना शुरू में ऐसे तुरंत आगे आगे नहीं जाना होता है ज्ञान में आस्ते आस्ते चलना होता है ऐसे मुझे बोलने लगे। तो मुझे ये बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी खराब लगी। तो मैंने क्या किया सवेरे बाबा को बोला कि मैंने मधुबन जाने के लिए इनको मना कर दिया तो सभी ने मुझे गलत समझा लेकिन सच बात यह है कि मेरे पास टिकट के लिए पैसे नहीं है। तो बाबा ने मुझे क्या जवाब दिया बाबा ने मुझे बोला कि सेंटर वाले अभी मधुबन जाएंगे और एक साल तक इंतजार करेंगे कि मधुबन जाना है आपका बाबा से मिलन हर दिन होता रहेगा ऐसे मुझे बोला। तो उसके बाद एक साल तक और वही समय था कि मुझे सेंटर से लोगों ने अलग कर दिया था। तो बाबा ने मुझे हर दिन पूरा साल हर दिन ऐसे अनुभव कराए मुझे कि कभी मधुबन की चक्कर लगा देते थे कभी ज्ञान के कुछ पॉइंट्स ऐसे बता देते थे तो कभी वतन के अनुभव नहीं करते थे। तो ऐसे सारे अनुभव कराते रहे मुझे और पूरा साल मेरे से ऐसी तपस्या बाबा ने कराई कि जो गायन बोलते हैं ना शुरू में यज्ञ में कि 12 साल सबकी तपस्या की और उसके बाद सबको अलग अलग अनुभव हुए। तो मेरी बात यह थी कि 12 साल उन्होंने तपस्या की लेकिन मेरा 12 मास में उन्होंने जितने अनुभव 12 साल में किए बाबा ने मुझे 12 मास में उतने अनुभव कराए। और इसी का कारण यह था कि मैं जो अपने अनुभव सुनाता हूँ बार बार जो अनुभव से तो मेरे अनुभव बाबा के साथ के बढ़ते गए। इसके पीछे कारण यह था कि वो समय ऐसे था कि मैं और बाबा के बीच में और कोई नहीं था ऐसे क्योंकि मुझे किसी से बात नहीं करनी थी और जो पूरा दिन मेहनत करनी थी और जो ये लोग खिलाएंगे और जब खिलाएंगे वही मुझे खाना था। तो कभी कभी ऐसे होता था कि मुझे ब्रेकफास्ट ये 2-2 बजे भी देते थे लेकिन तो एक सारे अनुभव के नशे में मुझे ये पता नहीं पड़ता था मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ या लंच कर रहा हूँ ये मुझे मालूम नहीं पड़ता था। मैं तो चलता रहा एक साल ऐसे थे मेरा चलता रहा। तो लास्ट में क्या हुआ कि बाबा ने मुझे जो सीजन बाबा को मिलने का सीजन था तो लास्ट टर्न था तो उस टाइम मुझे बाबा ने बोला कि अभी आपको मधुबन के लिए बाबा को मिलने के लिए आना है। तो मैं जहाँ पर रहता था वहां पर 3 बस और 2 ट्रेन इतना लंबा जर्नी था वहां से इधर आने में और बाबा ने सिर्फ मुझे 2 दिन पहले मुझे बताया था कि आपको बाबा को मिलने के लिए आना है। तो कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा था कोई टिकट नहीं तो फिर मैंने क्या किया जैसे वैसे मैं बैठ गया लेकिन बात यह थी कि मुझे सभी 5 3 ट्रेन 3 बस और 2 ट्रेन सब में मुझे बैठने के लिए आराम के साथ जगह मिली और उसी टाइम में बाबा को मिलके गया। वो साल भी मेरा बाबा को मिलने का मिस नहीं हुआ और उसी ट्रेन में क्या था कि सेंटर के टीचर्स बहनों का ग्रुप था तो उन्होंने देखा ये तो बिना लेटर बाबा को मिलके गया। तब से उन्होंने मुझे बोला कि आपको हम कभी रोकेंगे नहीं आप जब चाहे तब आप मधुबन में आ सकते हो ऐसे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद 2000 के बाद तो जो शांतिवन बना तब मुझे फिर से बहुत टूमच में बिजी हो गया ऊपर नीचे सब देखने में टूमच बिजी हो गया तो फिर मुझे बुखार और दर्द चालू हो गया मेरे से। उस टाइम तो सचिन भाई भी साथ उस टाइम थे हॉस्पिटल में लेकिन पंडित डॉक्टर उस टाइम थे। तो क्या था कि मुझे बाबा को मिलने के लिए नीचे जाना था 2004 की बात है और फरवरी की पहली मुरली थी उस टाइम। तो शाम को मुझे बाबा को मिलने के लिए जाना था, तो मैं बस से नीचे जा रहा था, तो बस में जाते ही मुझे दर्द चालू हो गया और नीचे उतरते उतरते मुझे इतना दर्द चालू हो गया कि मैं बैठ ही नहीं सकता था ऐसे। तो एवरेल्डी के बाहर सतीश गुप्ता जी खड़े थे, तो उनको हमने बोला कि ऐसी जी बात है, तो उन्होंने मुझे तुरंत एवरेल्डी में जाके चेक किया, तो पीपी थोड़ी सी मेरी बड़ी थी, तो दर्द में नेचुरल जनरली तो ऐसे होता ही है, लेकिन उन्होंने तुरंत क्या किया, मुझे दर्द की दवाई दी और बीपी भी दवाई दी, और मुझे बोला आप निश्चिंत होकर घर में चले जाओ, अभी कुछ नहीं होगा। तो सचमुच मैंने उनके ऊपर विश्वास रखे, मैं जाके नीचे बैठ गया हॉल में बाबा के सामने, और 5 मिनट मुश्किल से मुरली सुने और मैं वहां से बेहोश होकर गिर गया। और जैसे मैं गिर गया, तुरंत मदन वाले तो पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे उठा के एवरेली में वो लोग लेके आए, वो सतीश गुप्ता तुरंत दौड़ के आ गए वहां पर, और उन्होंने मुझे चेक किया कि सब एक करके। तो जैसे उन्होंने मुझे चेक किया तो मेरी गर्दन लूज हो गई, तो उन्होंने तुरंत अनाउंसमेंट कर दिया सिस्टम से और बोला सभी जो भी डॉक्टर्स है नर्सेस सभी आ जाओ यहाँ पर करके। तो सब आ गए वहां पर और श्रीमान डॉक्टर उनको भी बुलाया, तो उन्होंने देखा तो मेरी नस कुछ काम नहीं कर रही थी, देखा तो हार्ट भी कुछ काम नहीं कर रहा, तब सारे ऑर्गन्स मेरे कुछ सेकंड के लिए सारे बंद हो गए थे। तुरंत उन्होंने क्या किया, मुझे फुल ऑक्सीजन लगाया और सारे हार्ट के और सब पूरा मालिश करना चालू किया, और जैसे मुझे मालिश उन्होंने चालू की तुरंत मैं शरीर से डिटैच हो गया, और शरीर से डिटैच इतना डिटैच हो गया शरीर से कि मैं जैसे एक डब्बा है और डब्बे के अंदर कोई चीज रखते इतने तक मैं शरीर से डिटैच हो गया। ये लोग पूरा मालिश करते रहे मालिश करते रहे, और मैंने क्या किया कि पूरे शरीर के अंदर हर ऑर्गन को अंदर से लाइट देना चालू किया मैंने। ये लोगों का काम वो चल रहा था और मेरा काम अंदर से ये चल रहा था, तो मैं पूरा शरीर के हर ऑर्गन्स को शक्तिशाली बनाने के काम कर रहा था, क्योंकि कोई भी काम नहीं कर रहा था मेरा ऑर्गन्स। तो मैं पूरा एक एक ऑर्गन्स पूरा मैंने लाइट मेरे शरीर के बाहर नहीं निकल रही, लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि पूरे शरीर में मेरी लाइट फैल रही ऐसे। और उसके बाद मैंने क्या किया कि पूरे शरीर से उसके बाद मैंने पूरे शरीर में सिर से नीचे पैर तक एक बार पूरा राउंड लगाया अंदर से, और फिर बाबा को बोला कि मैं अभी रेडी हूं। तो जैसे मैंने संकल्प किया मैं रेडी हूं, मैं तुरंत शरीर से बाहर निकल गया, और शरीर से तो बाहर निकल गया मैं, लेकिन मेरा सूक्ष्म जो कनेक्शन था वो मेरे शरीर के साथ जुड़ा हुआ था। तो जैसे मैं बाहर निकल गया तुरंत सतीश गुप्ता तो मेरे ऊपर नजर ही रखे हुए थे, तो उन्होंने तुरंत देखा कि मैं निकल गया बाहर, और फिर उनको अभी तक याद है जब भी मिलते तो मुझे बोलते आप वापस कैसे आ गए ऐसे अभी तक बोलते। तो उन्होंने तुरंत बोला कि सबको बोला कि इसको दबा के रखो और सारा मालिश वगैरह कर, लेकिन उन्होंने डिक्लेयर किया कि अभी खेल पूरा हो गया ऐसे। और सब मैं सुन भी रहा था और सब ऊपर से मैं देख भी रहा था, और मैं सीधा ऊपर 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 जा रहा था, लेकिन मेरा बॉडी से कनेक्शन सूक्ष्म जुड़ा हुआ था ऐसे। तो आप देखेंगे उस टाइम जो फरवरी 4 की जो मुरली शुरू की, तो बाबा ने पूरा 5 मिनट के लिए मुरली बंद करके रखी हुई थी, 5 मिनट के लिए एकदम साइलेंस, पूरा हॉल में साइलेंस था। और जैसे 5 मिनट के बाद मैं नीचे आया फिर से शरीर में, तब बाबा ने उसके बाद मुरली चालू की, तो मैं से सब तरफ आना, क्योंकि मुरली तो सब तरफ जाते फॉरेन में अगले सब तरफ चले जाते, तो सब सेंटर से मुझे हॉस्पिटल में ईमेल आ रहे थे सबसे। तो कहने का मतलब यह था कि अशरीरपन की जो स्थिति का मुझे ये बताना था कि जैसे मैं नीचे आगे शरीर में जब प्रवेश किया मैंने, तो ये लोग सारे देखते रहे कि मैं तुरंत उठ के खड़ा हो गया, जबकि मेरे जब ये लोग मुझे ऑक्सीजन दे रहे थे तो मैं अंदर से फील करता था कि ऑक्सीजन मेरे अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि कोई भी ऑर्गन काम नहीं कर रहे थे, तो सारा ऑक्सीजन सब बाहर निकल रहा था, और लेकिन ये फोर्स से मालिश भी कर रहे और ये भी कर रहे, तो मुझे सारा अंदर से महसूस सब हो रहा था कि ये कुछ काम की चीज नहीं है। फिर जब मैं अंदर आ गया शरीर के अंदर, तो उठ के खड़ा हो गया, तो उन्होंने तुरंत मुझे सभी ने मुझे दबा के रख दिया। लेकिन बात यह थी कि जैसे मैं अंदर आ गया तो मैं हर ऑर्गन्स इतने पावरफुल बन गए थे, मेरी आंखें इतनी तेज बन गई थी, तो मुझे 1 किलोमीटर तक एक छोटी सी चीज भी मैं इतनी क्लियर देख सकता था, मुझे चश्मे की कोई जरूरत नहीं थी, इतनी मेरी आंखें एकदम तेज हो गई, और शरीर में मेरे इतनी शक्ति आ गई जैसे मुझे लग रहा था कि जैसे पहाड़ी उठा के मैं फेंक दूं, सबको मैंने हटा दिया तुरंत सबको, और कैसे मेरा पूरे ऑर्गन्स मेरे इतने शक्तिशाली बन गए थे ऐसे। लेकिन इन्होंने तुरंत मुझे ये क्या दादी और ये भी आए थे उस टाइम, जब तक मैं 5 मिनट ऊपर था तब तक दादी और निर्भय भाई भी वहां पर चक्कर लगाए, क्योंकि तुरंत सबको मालूम पड़ा, क्योंकि हाल में सब हलचल हो गई ना कि क्या होगा, तो सचिव ने अनाउंसमेंट करते कि ऐसे भाई तो सब मुझे पहचानते थे, बॉम्बे का ही ग्रुप था उस टाइम, तो बॉम्बे वाले सारे आ गए, तो इन्होंने सीधा सतीश गुप्ता ने सब डिक्लेयर किया कि अभी पूरा हो रहा है ऐसे ऐसे। तो मैं तो सुन रहा था ये करके, लेकिन जब मैं आ गया ये करके, तो इन्होंने तुरंत दबा के किया, तुरंत एम्बुलेंस लगा दिया, और दो तीन डॉक्टर थे, कृष्णा डॉक्टर भी साथ में थे, एक दो नर्स, ऑक्सीजन का सिलेंडर वगैरह सब अंदर साथ में रख के ये लोग मुझे हॉस्पिटल लेके आए यहाँ पर ये करके। तो बीच बीच में शांतिवन से हॉस्पिटल ग्लोबल में लेके आए, तब तक मुझे 2 घंटा लगा दिया। जब जब कॉर्नर आएगा, ये लोग गाड़ी रोकते थे, आगे पीछे 10 गाड़ी चलती थी मेरे, और ये लोग मुझे रोकते थे और चेक करते थे है या नहीं, ऐसे सारा चेक करके करके मुझे 2 घंटे में रात को 2 बजे मुझे हॉस्पिटल लेके आए। तुरंत पंडित डॉक्टर के आ गए, उन्होंने सब चेक किया, सारी बातें आगती हो। उसके बाद से क्या हुआ कि मेरी एक नस क्रैक हो गई थी, उन्होंने जो ये किया था सारा मसाज किया था उसमें ऐसे, तो ऐसे तो क्या था, एक तरफ से मेरा ब्लड निकल रहा था, और ये सारे अनाउंसमेंट करते थे बार 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 कि एक ग्रुप का कोई भाई हो तो तुरंत तुरंत आ जाओ, तुरंत आ जाओ। तो 15 दिन ऐसे सिस्टम चला कि एक तरफ से ब्लड की थैली नीचे लगी हुई थी, थैली में ब्लड निकल रहा था, एक तरफ से मुझे नया ब्लड डाल रहे थे ऐसे। तो आप देखेंगे मेरे जो पहले वाले फोटोज और अभी में बहुत फर्क है, क्योंकि किसने किसने जैसे जैसे जो हेल्थी थे उन्होंने जो ब्लड दिया, तो मेरा नेचर भी ऐसे बन गया ऐसे, मेरा स्वरूप चेंज हो गया सारा इस ढंग से। हाँ फोटो, आपको फोटो चाहिए तो फोटो मैं दिखा दूंगा आपके ऐसे तुरंत। मुझे जब उसके बाद मुझे कई लोगों ने मुझे पहचाना ही नहीं है, क्योंकि क्या था कई मोटे मोटे लोगों ने मुझे ब्लड दे दिया ऐसे, तो मेरा सारा मेरा चेहरा में कंप्लीट चेंज हो गया मेरा चेहरा ऐसे, कहने का मतलब ऐसे। तो लेकिन क्या हुआ कि जब डॉक्टर ने मेरा सारा काट सारा चालू कर दिया, तो उसके बाद मेरी शक्ति कंप्लीट डाउन हो गई ऐसे। तो हुआ क्या कि मेरा उसमें वेट जो है मेरा 35 kg तक नीचे आ गया। तो मे मास में भी उतनी कड़ी धूप में मुझे इतनी ठंडी लगती थी, मुझे ब्लैंकेट उड़ के बाहर बैठना पड़ता था मुझे। तो उन्होंने कहते मुझे डॉक्टर ने सभी ने बोला कि अहमदाबाद के डॉक्टर सभी ने कोई उन्होंने दिखाया ये करके सभी ने बोला कि आप कभी अभी लॉन्ड्री का काम कभी नहीं कर सकते हो। तो वो बात मेरे अंदर जज की, मैं बोला कि नहीं कर सकते तो इनको मुझे दिखाना है कि मेरी प्रैक्टिस क्या होती है। हमने तुरंत अपनी प्रैक्टिस चालू कर दी ऐसे, सभी ऑर्गन्स को मैंने शक्ति देना चालू कर दिया। 2 मास के अंदर मैंने फुल लॉन्ड्री का काम चालू कर दिया, जबकि मुझे डॉक्टर ने साफ मना किया था आप कर ही नहीं सकते हो, और वेट भी मेरा 65 तक बढ़ गया ऑटोमेटिक। मानो सारे ऑर्गन में पूरा एकदम तुरंत में अच्छी तरह में हेल्दी हो गया ऐसे। तो कहने का मतलब क्या है कि अनुभव मैं आपको सुना रहा हूं, तो मुझे एक सिर्फ छोटा सा प्रश्न आपको पूछना है ऐसे कि सारे अनुभव जो बाबा कराता है तो उसके पीछे बाबा के कुछ राज होते हैं, बाबा ऐसे बिना राज का बाबा कभी अनुभव कराते नहीं है, तो अनुभव के पीछे आपने क्या सीखा एक मतलब। जैसे बाबा ने मुझे बोला कि जैसे सेंटर से मुझे निकाल रहे, बाबा ने बोला हाँ बोलो, शादी के बाद बोले बाबा ने हाँ बोलो, हर बात में बाबा मुझे हाँ बोल रहे थे, तो बाबा मुझे कौन सी शिक्षा देना चाहते थे तो बात ये नहीं थी बाबा, मैं हर अनुभव की बात मैं आपको बात बता दूंगा, लेकिन ये बात ऐसी थी कि मेरे 15 मेंबर इतना बड़ा परिवार था लोग कई परिवार, और जैसे मैं ज्ञान में चला तो उन्होंने क्या किया कि मेरी जन्म कुंडली बड़े काशी के जो पंडित थे तो उनको दिखाई थी, और काशी के पंडित तो बहुत पहुंचे हुए होते, वो जो भी बोलेंगे सब लोग हाँ हाँ बोलते, ऐसी मेरा एक मान्यता चलती है ऐसे। तो उन्होंने मुझे उनको परिवार वालों को बोला था कि सन्यासी कभी नहीं बन सकता, इसके तकदीर में 2-2 शादी है तो कभी नहीं बन सकता ये करके, ऐसे उन्होंने ये कर दिया था। तो इसी के लिए लोग सारे मेरे पीछे पड़े थे लोग सारे ऐसे, और बाबा ये नहीं चाहता था, कहने का मतलब ये समझो आप कि बाबा ये नहीं चाहता था कि इतने बड़े परिवार के साथ मेरा टकराव हो जाए, मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाए, टाइम वेस्ट हो जाए, और मैं ज्ञान में चलने के लिए मुझे प्रॉब्लम आ जाए, तो ये बाबा नहीं चाहते थे। इसके लिए बाबा का कहने का मतलब ये था कि आप ये सबको बड़ों को, क्योंकि एक ही छोटा भाई और बाकी सारे बड़े लोग थे, तो बाबा का कहने का मतलब था आप उनको सम्मान दो और बाकी काम क्या करो मेरे ऊपर छोड़ दो। तो हम जितना विश्वास से बाबा के साथ विश्वास से और समर्पणता से चलते हैं, तो देखो कैसे साथ के अनुभव, उसके कारण मेरे साथ के अनुभव बढ़ते गए बढ़ते गए। ऐसे नहीं कि मैं अनुभव आपको सुना दूं और क्लास करूं तो आप अनुभव करेंगे, ऐसे नहीं। बाबा के प्रति विश्वास और समर्पण का ये दो चीजें बहुत जरूरी है, अनुभव सुनना और लेकिन उसके साथ ये दोनों चीजें जरूरी है। जैसे क्या होता है उदाहरण के ऐसे, जैसे मुझे मधुबन से ये लोग निकाल रहे थे, तो जैसे निकाला था तो सारे वहां पर थे, रतन दादी थे, मोहिनी बहन थी, सर मुनिवन सभी वहां पर थे। तो उन्होंने मुझे बोला सीधा कि आपको पहले बोला था कि आपका चरण ठीक नहीं, आपको यहां से जाना है, लेकिन जाना है तो ऐसे मुझे बोला कि आपको पे कर देंगे, परमानेंट का नंबर आपका निकाल देंगे, आप जब भी आ जाएंगे यहां पर तो उसके बाद आपको फिर से ट्रायल पर रहना है। तो मैंने उनको बोला ट्रायल पर, मैं जितने साल में मधुबन में रहूंगा मैं ट्रायल पर ही रहूंगा। क्यों? क्योंकि बाबा बोलता है कि जो मेरे दिल में है वो आपके दिल में नहीं है। तो जब तक हम बाबा के दिल में बैठेंगे तब तक तो हम ट्रायल पर ही है ना। तो हमने बोला तुम्हें तो जब भी आ जाओ आप मुझे हमेशा के लिए ट्रायल पर ही रखो। ऐसे तो कहने का मतलब है ना, इतने तक हमको बाबा के साथ रहना चाहिए ऐसे। तो उस दिन जो प्रश्न भी पूछा था मुझे इन्होंने कि ये करके कि बड़े लोग आपके ऊपर इतना विश्वास क्यों रखते थे इस ढंग से ऐसे, तो इसका उत्तर यही था कि हमारा विश्वास आपस पे ऐसे चलता था, मेरी चलन का उनके ऊपर ऐसे प्रभाव पड़ता था कि जिम्मेदारी बचपन से ही मेरा विश्वास से काम करना, जिम्मेदारी से काम करना बचपन से ही मेरे नेचर थे, और वही प्रभाव मेरे लौकिक वालों के ऊपर भी पड़ता था। तो बड़े ये नहीं समझते थे कि इसको हम जो काम देते थे तो वो जानता है या नहीं जानता है, उनको इतना ही पता था कि इसको अनिल भाई को मैंने बोला हमने तो परफेक्ट काम होना ही है ऐसे। और मेरा भी यही संकल्प था कि बड़े कुछ भी का बोले तो मैं भी ये नहीं सोचता था कि मैं जानता हूँ, उन्होंने बोला माना मुझे करना ही है और परफेक्ट होता था। जैसे क्या था कि उस टाइम की बात है जब बहुत यहाँ गिने चुने लोगों के पास गाड़ियां थी, दो चार गाड़ियां पर्सनल थी, तो उसी टाइम मुझे बाबा ने माना दादी ने और मैंने बोला कि आपके पास कुछ व्हीकल होनी चाहिए, आप पे कर दो हम आपको व्हीकल देंगे, आप अपने पास रखो ऐसे। तो मोहिनी बहन और दादी ने मुझे हाथ में चाबी दे दी और बोला कि रखो ये करके। तो मैंने तुरंत गाड़ी में बैठा थोड़ा ट्राई करने के लिए। तो जैसे मैं गाड़ी में बैठा मैं कार में, तो क्या था मुझे अंदर से कार चौड़ाई में ऐसी बड़ी दिखाई पड़ रही थी और रोड चौड़ाई में छोटा लग रहा था ऐसे। तो मुझे लगा कि रोड पर मैं कार कैसे चलाऊ, तो मैंने बोला कि मेरे बस का काम नहीं, अब तो खुशी को भी दे दो ऐसे मैंने बोला। तो बात ये हुई थी तो उनका तो विश्वास था मेरे ऊपर, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप एक बार ट्राई करो आप सीख जाएंगे ऐसे। तो सचमुच मैं चार दिन में इतना परफेक्ट सीख गया गाड़ी कार सीखना, एकदम परफेक्ट सीख गया। उसके बाद क्या हुआ था कि मैं तो चार पांच साल सीख में हमने मशीन लगाया और साथ में मैं समर्पित के लिए इधर आ गया। तो बिजनेस से ये सारा खेल चलता रहा। तो यहाँ पर मैं जब बॉम्बे गया तो उसके बाद इनका मशीन का बहुत कुछ प्रॉब्लम आ गया और अंदर सारे कपड़े खराब हो रहे थे, सब ये हो रहा था। तो मुझे निरोध भाई ने फोन किया कि अनिल भाई आप आ जाओ, बहुत इनको कुछ नहीं पता नहीं पड़ रहा है ऐसे। तो मैं जब पे किया तो आया तो उन्होंने देख बोला सब कि अंदर बेरिंग सब टूट गया था और सारा ग्रीस ऑयल सारा अंदर चला जा रहा था और ये हो रहा था, कपड़े सारे खराब हो रहे थे। तो नीरव भाई ने बोला कैसी बात है अनिल भाई, देखो कुछ करना ही है। तो मैंने तो शरीर का स्टडी किया था, शरीर में तो बेरिंग बेरिंग की तो कुछ बात ही नहीं थी, तो मैंने जिंदगी में कभी बेरिंग देखा ही नहीं था। मैं सोचा कि मना करो तो भी अच्छा नहीं लगता है, इनका मेरे ऊपर विश्वास है। तो मैंने क्या किया ठीक है इनको बोला कि ठीक है मैं देखता हूँ। तो 12 बजे जैसे ही काम पूरा हो गया हमारा लॉन्ड्री का, उसके बाद मैंने अंदर से लॉक किया कि कोई मुझे देखे नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं तो हंसेंगे क्योंकि वैसे ही मुझे पता नहीं था। मैं क्या क्या नोटबुक और पेन ले लिया और सारा मशीन खोलना चालू किया और जो जो पार्ट में निकालता हूँ जहां से निकालता तो मैंने नोट करना चालू किया, कैसे नोट करके रख दिया और पूरा पार्ट जैसे मैंने खोला ठीक करके वही देख के फिर से मैंने मशीन ठीक कर दी। तो मशीन इतनी अच्छी ठीक हो गई कि मैकेनिक से भी अच्छी ठीक हो गई और सब तरफ वो बात फैल गई कि ये सब कुछ जानता है, जबकि मैं कुछ ये जानता नहीं था ये सब बात। तो 12 बजे मैंने मशीन खोली, रात को 12 बज गया मुझे, फिर भी मैं ना स्नान किया खाना पीना कुछ भी नहीं, संकल्प ये था कि मेरी इज्जत न चली जाए कि मैं पूरा यही करूं ऐसे। तो पूरा मैं करके रात को 12 बजे आके स्नान करके फिर मैंने खाना किया। ऐसी बातें बहुत सारी बातें ऐसी बात की। तो कहने का मतलब ये था कि बाबा के प्रति मेरा जो समर्पण भाव था ये करके कि बाबा कुछ भी बोलेंगे जो बाबा को जो कहना है कि बाबा, जब से मैं ज्ञान में चला बाबा के ऊपर इतना विश्वास था, मेरे मैंने कभी प्रश्न ही नहीं पड़ा मुझे कि कोई लोग अलग अलग प्रश्न पूछते हैं, मुझे ही नहीं पूछते, मैं तो सबसे अलग रहता हूँ। कई बोलते हैं कि हमको ये प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न ये पर ऐसे जवाब से मैंने कभी संकल्प ही नहीं आया कि बाबा को किसी को क्या प्रश्न पूछना है। बाबा ने मुझे हर प्रश्न का उत्तर जो मेरा एक साल से मेरी तपस्या बाबा ने मुझे कराई, हर प्रश्न का उत्तर मुझे दिया, हर प्रश्न का हर पॉइंट का मुझे राज ऐसे ऐसे बाबा ने बता दिया। और वही नोट्स मेरे पर्सनल नोट्स थे और वो नोट्स ये लोगों ने जब देखा तो नोट्स हर एक को ऐसी लगे अच्छी लगी, तो ये वो पढ़ने के लिए लेते थे, वो पढ़ने के लिए लेते, तो ऐसी नोट कहाँ कहाँ चले गए, वो नोट मेरे पास वापस ही नहीं आया अभी तक। उसके बाद फिर मैंने फिर दोबारा मैंने पूछा चालू कर दिया, डायरी कहाँ लिखे, कहाँ डायरी है तो वही पता नहीं, क्योंकि मुझे वापस ही नहीं कोई देना चाहते, हर एक बोलता था कि इसने लिया उसने लिया उसने लिया, वो तो दोबारा अभी तक वो डायरी मेरे पास वापस ही कभी नहीं। तो इसलिए तो बाकी अभी मैंने 2 मिनट आपके लिए इसके रखा कि आपको सर बात अभी प्रश्न पुरुषार्थ क्या चल रहा है। लेकिन क्या होता है कि पुरुषार्थ हर एक की कमजोरी अपने अपने होते है, हमको जो भी क्लास करते हैं उसमें हमको खुद को एक क्लास सुनना भी है, उसमें हमको खुद को हर एक को चेक करना है कि मेरे में क्या कमी है, और पुरुषार्थ का सेटिंग हमको खुद को करना होता है। अभी मैं बता दूं मैंने क्या पुरुषार्थ किया, वही पुरुषार्थ आप करेंगे तो उससे कोई फायदा तो नहीं है। हाँ बाकी मदद तो मिल सकती है मैंने जो आपको बताया, लेकिन मैं आपको एक लाइन में उसका जवाब आपको दे देता हूँ कि पुरुषार्थ आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे आप हंसो नहीं, मैं तो कोई गीत गाने वाला नहीं, लेकिन ऐसी बात है। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी, हो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। कहने का मतलब था कि इतना नशा हमारे पास होना चाहिए पुरुषार्थ के लिए, जब तक नशा नहीं है तब तक हम कितना भी पुरुषार्थ करेंगे तो पुरुषार्थ का मजा नहीं आता है, और पुरुषार्थ जो हम करते हैं उसमें रस नहीं होता, तो जो भी पुरुषार्थ हम करेंगे उसके साथ हमको नशा होना चाहिए, ये कहने का मतलब। मुझे बोला था 6:45, इसके लिए मैंने 6:45 मैंने पूरा कर दिया। ऐसे था कहने का मतलब, मुझे कई पूछते हैं कि बाबा के इतने साल आप पुराने थे कि पुराने हैं, तो बाबा को आपने बहुत बार पर्सनल मिले होंगे आप, ऐसे तो मैं भी समझता हूँ मैं पर्सनल तो बहुत मिला था, क्योंकि उस टाइम जब हम आए थे मेडिटेशन हॉल में क्लास वगैरह से बाबा को मिलना वगैरह सब चलता था एक करके, तो बाबा को मिलने का तो उस टाइम तो हर हफ्ते बाबा 3-3 बार आते थे, तो 3-3 बार आते थे तो सहज है कि तो सवेरे रात को 6:30 बाबा आते थे, और सवेरे 5-5 बजे तक क्लास चलता था सारा, उनका मुरली चलती थी, तो बहुत बार मुझे ऐसे पर्सनल मिलने का मौका मिला मुझे। मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि बाबा के ऊपर मेरा कितना विश्वास था उस टाइम, तो ऐसे तो मुझे पर्सनल मिलने का बहुत बार चांस मिला, और लौकिक परिवार जैसे मैंने बोला ना मैं यहाँ बैठ के लोग मुझे देखते थे, ऐसे करके करके बाबा ने सारे परिवार 15 मेंबर को बाबा ने चेंज किया, वो सारे फिर अभी हर टर्म में आते रहते, सारे अभी पीके बन गए, ऐसे कहने का मतलब। तो जब आते थे तो बाबा के साथ ये करते थे, मुझे मेरे साथ अलग मिलने का उनको मौका भी मिला ऐसे। तो कहने का मतलब जब मैं बाबा के सामने चला जाता था, और मधुनालों को भी कई बार बाबा अलग से भी मिले थे, तो मैं बाबा के सामने जब जाता था तो मेरी ये भावना नहीं होती थी कि बाबा मुझे कोई पर्सनल मेरे से ही बात करे, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो क्या करें, बातों से नहीं मिलते, हमारे मस्तिष्क के चेहरे की आंखों की भावना से हम मिलते हैं, वो प्यार तैयार हो जाता है, ऐसे नहीं कोई बातें करे, बात किया बाबा ने और दूसरे टाइम बात नहीं किया तो फिर हमारा दिल छोटा होता है। तो हमारे मेरे मन में कभी नहीं, मैं बाबा के सामने जब भी मैं गया अभी तक कितनी बार गया, मेरे मन में कभी भी ऐसे नहीं आया कि मैं बाबा मुझे पर्सनल क्या बताए, तो मुझे अभी तक याद नहीं है कि मुझे बाबा ने तो बहुत बार बताया, जैसे मैं जाता था बाबा मुझे बताते, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं रहता था कि एक भावना ही अंदर से निकलती थी कि बाबा ने मुझे क्या बताया, अभी तक मुझे याद नहीं है ऐसा, मेरा इतनी भावना मेरी रहती है कि जो सवेरे मुरली चलती है वही मेरे लिए पर्सनल है। तो क्या होता है कि जब मुरली के प्रति भी मेरी ये भावना होने के कारण मेरे मुरली के पॉइंट्स वगैरह जो होते तो जैसे पॉइंट होते मेरे बुद्धि में कम्प्लीट फिट बैठते, क्योंकि मुझे ये भावना होती है कि मुरली ही मेरे लिए पर्सनल पॉइंट है। ऐसे